एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जो है तो गजब की, लेकिन शायद सच नहीं, फिर भी इसने इतिहास बदल दिया।
हाँ,
हम बात कर रहे हैं जेफ्री ऑफ मॉनमाउथ की लगभग 900 साल पुरानी किताब ब्रिटेन के राजाओं का इतिहास, यानी हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिए की।
नमस्कार। और ये किताब कमाल की इसलिए है क्योंकि ये शायद मध्ययुगीन यूरोप की सबसे सबसे मशहूर और असरदार किताबों में से एक थी।
अच्छा।
इसने न सिर्फ ब्रिटेन को एक शानदार मतलब हीरो वाला अतीत दिया, बल्कि दुनिया को किंग आर्थर की वो कहानी दी।
हाँ हाँ, किंग आर्थर,
जिसके हम सब दीवाने हैं। और सोचिए, सदियों तक लोग इसे सच मानते रहे।
बिल्कुल। और यही सवाल उठता है भाई, एक 12वीं सदी की किताब जो ठीक से इतिहास भी नहीं है, वो आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? मेरे हिसाब से ये हमें सिखाती है कि कहानियां कितनी ताकतवर होती हैं। मतलब कैसे देश अपनी पहचान बनाने के लिए मिथक गढ़ते हैं।
सही कहा।
कैसे कभी कभी मनगढ़ंत अतीत का इस्तेमाल आज के मकसद के लिए होता है, और कैसे एक लेखक की कल्पना सदियों तक लोगों की सोच पर मतलब राज कर सकती है।
सही कह रहे हैं। ये कहानी है कि कहानियां कैसे बनती हैं और कैसे वो कभी कभी सच से ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं।
तो चलिए फिर खोलते हैं इस पुरानी थोड़ी रहस्यमयी किताब के पन्ने।
जरूर। शुरुआत करते हैं इसके लेखक से, जेफ्री ऑफ मॉनमाउथ।
हाँ, ये साहब 12वीं सदी में थे, करीब 1095 से 1155 तक। वेल्स के रहने वाले थे, पढ़े लिखे पादरी, विद्वान, बाद में बिशप भी बने, और ऑक्सफोर्ड से भी इनका नाता था।
और उनकी खासियत ये थी कि वो शायद वेल्श या ब्रेटन मूल के थे।
अच्छा।
मतलब उन्हें वो पुरानी सेल्टिक लोक कथाएं, वो किस्से कहानियां पता थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं, लिखी कम जाती थीं। तो जेफ्री ने इन कहानियों को लिया और उन्हें उस जमाने की ऊंची समझी जाने वाली भाषा लैटिन में पिरो दिया। एक तरह से वो दो दुनियाओं को जोड़ रहे थे।
हाँ, और उन्होंने एक बड़ी चालाकी की।
हाँ,
क्या
दावा किया कि ये किताब तो एक बहुत पुरानी ब्रिटिश भाषा की किताब का बस अनुवाद है, जो उन्हें ऑक्सफोर्ड के एक बड़े साहब वॉल्टर ने दी थी।
अच्छा, ये तो कमाल है।
अब आजकल के विद्वान मानते हैं कि ये शायद एक तरीका था अपनी कहानी को असली जैसा दिखाने का, है ना? पुरानी छुपी हुई किताब का हवाला दो तो लोग ज्यादा भरोसा करते हैं।
बिल्कुल।
मतलब एक तरह की साहित्यिक तरकीब।
हाँ।
तो जेफ्री कोई आज के जमाने के इतिहासकार नहीं थे जो तथ्यों की छानबीन करते हैं। वो एक जबरदस्त कहानीकार थे, बहुत क्रिएटिव।
हाँ, उन्होंने कई चीजें मिलाई, वेल्स की पुरानी वंशावली।
हाँ।
पहले के कुछ लेखकों की बातें,
फ्रांस की लोक कथाएं, बाइबल की टाइमलाइन, मशहूर रोमन कवि वर्जिल की कहानी एनीड,
और इन सब के ऊपर
अपनी भरपूर कल्पना। वो ब्रिटेन के लिए एक तरह से मिथक गढ़ रहे थे, एक नैरेटिव बना रहे थे।
तो आखिर ये किताब है कि इस बारे में थोड़ा ये समझते हैं।
हाँ।
ये ब्रिटेन का लगभग 2000 साल का कह सकते हैं काल्पनिक इतिहास है।
2000 साल।
कहानी शुरू होती है ट्रॉय शहर के गिरने से, करीब 1100 ईसा पूर्व, और चलती है 7वीं सदी तक, जब एंग्लो सैक्सन लोगों ने ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया।
और इसका मकसद वो काफी साफ था। ब्रिटेन के जो मूल निवासी थे, वेल्श, कॉर्निश, ब्रिटेन लोगों के पूर्वज, उन्हें एक शानदार, पुराना और लगातार चलने वाला इतिहास देना।
अच्छा।
जेफ्री ये साबित करना चाहते थे कि ब्रिटेन वाले कोई जंगली लोग नहीं, बल्कि महान ट्रोजन हीरो के वंशज हैं। वो रोम वालों के बराबर है, बल्कि कभी कभी उनसे भी बेहतर।
अरे वाह।
ये सीधे सीधे ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे पर ऊंचा उठाने की कोशिश थी, उसे रोम जैसी प्राचीन और महान सभ्यता का दर्जा देने की।
तो कहानी शुरू होती है ट्रॉय के हीरो एनियस के परपोते ब्रूटस से।
ब्रूटस, हाँ।
ब्रिटेन रखता है और लंदन शहर की नींव रखता है, जिसे वो नई ट्रॉय कहता है। सोचिए क्या धमाकेदार शुरुआत है। ये तुरंत ब्रिटेन को एक हीरो वाली पहचान देता है।
बिल्कुल, एक फाउंडिंग मिथ जिसे कहते हैं। इसके बाद राजाओं की लंबी लिस्ट आती है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, शेक्सपियर के नाटक से मशहूर किंग लियर और उसकी तीन बेटियों की कहानी।
हाँ, किंग लियर,
वो इसी किताब से निकली है।
अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी।
हाँ, फिर आते हैं दो भाई, बेलिनिस और ब्रेनियस, जो पहले आपस में लड़ते हैं, फिर साथ मिलकर फ्रांस और यहाँ तक कि रोम को भी जीत लेते हैं और लूट लेते हैं।
तो रोम को?
हाँ, जेफ्री ने असलियत में गॉल्स यानी फ्रांस के लोगों द्वारा रोम की लूट को इन ब्रिटिश राजाओं के नाम कर दिया। जबरदस्त तरीके से इतिहास को अपनी तरफ मोड़ा है।
कमाल है, मतलब पूरी तरह से नैरेटिव कंट्रोल।
जैसे ब्रिटेन को एक कमजोर देश नहीं बल्कि एक ताकतवर राज्य था जिसने रोम का डटकर मुकाबला किया।
अच्छा,
यहाँ भी मकसद वही है, ब्रिटेन की इज्जत बढ़ाना।
और फिर आता है इस किताब का दिल, किंग आर्थर की कहानी।
हाँ, आर्थर।
जेफरी से पहले आर्थर वेल्श कहानियों में एक बहादुर योद्धा तो थे, लेकिन जेफरी ने उन्हें एक महान सम्राट बना दिया
जिसने पूरे यूरोप को जीत लिया। उनका शानदार दरबार, गोलमेज के शूरवीर, रानी ग्विनेवियर,
और फिर भतीजे मॉडरेट का धोखा, आखिरी लड़ाई और घायल होकर वो रहस्यमयी द्वीप एवलॉन चले जाना, ये सब जेफरी की देन है।
हाँ, ये सब जेफरी ने बुना है।
तो चलिए इस कहानी के कुछ खास हिस्सों पर नजर डालते हैं, लेकिन पूरी कहानी सुनाने के बजाय ये देखते हैं कि जेफरी कैसे अपनी बात कह रहे थे, क्या संदेश दे रहे थे।
ठीक है,
शुरुआत ब्रूटस से होती है। ये ब्रिटेन को एक क्लासिकल वीर पहचान देने का तरीका था, जैसे रोम की कहानी है उसे ग्रीस और ट्रॉय से जोड़ दिया।
हाँ, एक एपिक शुरुआत।
फिर किंग लियर की कहानी आती है जो दिखाती है कि अच्छे राजा कैसे होने चाहिए और चापलूसी कितनी खतरनाक हो सकती है। ये सीधे सीधे राजधर्म की बात है, लीडरशिप का सबक।
बिल्कुल। फिर वो भाई बेलिनिस और ब्रेनियस का रोम जीतना, ये राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने की कोशिश। देखिए, हम भी किसी से कम नहीं।
हाँ हाँ, जब रोमन आते हैं तब भी ब्रिटेन को कमजोर नहीं दिखाया जाता, मुकाबला करते हुए दिखाया जाता है। ये सब ब्रिटेन की ताकतवर छवि बनाने के लिए था।
और फिर आता है वो दौर जब रोमन चले जाते हैं और ब्रिटेन मुश्किल में पड़ता है।
हाँ, उथल पुथल का समय।
उत्तर से हमने होते हैं और राजा वोटिगान मदद के लिए सैक्सन लड़ाकों को बुला लेता है, हैंगिस्ट और होर्सा को।
और ये एक बड़ी गलती साबित होती है।
हाँ, सैक्सन धोखेबाज निकलते हैं और ब्रिटेन पर कब्जा करने लगते हैं। यही एंट्री होती है जादूगर मर्लिन की। मर्लिन बताता है कि जमीन के नीचे दो ड्रैगन लड़ रहे हैं, एक लाल और एक सफेद।
दो ड्रैगन?
हाँ, लाल ड्रैगन ब्रिटेन वालों का प्रतीक है और सफेद ड्रैगन सैक्सन हमलावरों का।
अच्छा।
मर्लिन भविष्यवाणी करता है कि लड़ाई लंबी चलेगी, लाल ड्रैगन शुरू में हारेगा पर आखिर में जीतेगा।
ये तो बहुत सिंबॉलिक है।
बिल्कुल, ये मुश्किल वक्त में उम्मीद जगाने वाली बात थी, खासकर वेल्श लोगों के लिए जो उस समय अंग्रेजों के अधीन थे। ये राष्ट्रीय नियति और आशा का प्रतीक बन गया।
और लाल ड्रैगन आज भी वेल्स का निशान है।
हाँ, इसी माहौल में ऊथर पेनड्रैगन राजा बनता है और मर्लिन के जादू से आर्थर का जन्म होता है।
और फिर आता है आर्थर का राज। ये किताब का सुनहरा दौर है,
गोल्डन एज।
आर्थर एक आदर्श राजा है, बहादुर, न्यायप्रिय, सबको साथ लेकर चलने वाला। वो सैक्सनों को हराता है, ब्रिटेन को एक करता है, उसका दरबार शानदार है, उसकी शूरवीर महान है।
लेकिन जेफरी यही नहीं रुकते, वो आर्थर को पूरे यूरोप का विजेता बना देते हैं। आयरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, सब उसके कदमों में।
मतलब ब्रिटेन एक सुपर पावर।
हाँ, वो रोम को भी चुनौती देता है। सोचिए, ये ब्रिटेन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में दिखाना था। ये उस भाग्य के पहिए का शिखर है जब किस्मत बुलंद होती है।
पर किस्मत का पहिया घूमता है ना
हमेशा। जब आर्थर यूरोप में होता है, उसका भतीजा मॉड्रेड ब्रिटेन में गद्दी और रानी दोनों पर कब्जा कर लेता है।
ओ, धोखा।
हाँ, विश्वासघात। आर्थर को वापस लौटना पड़ता है, कैमलॉन की लड़ाई में सब कुछ तबाह हो जाता है।
दुखद अंत। एक दिन वापस आएगा, द किंग हु वॉज एंड द किंग हु विल बी।
बिल्कुल, ये कहानी हार में भी एक उम्मीद छोड़ जाती है।
किताब का अंत दुखद है, आर्थर के बाद ब्रिटेन बिखर जाता है, सैक्सन हावी हो जाते हैं।
हाँ, पतन का दौर। आखिरी ब्रितानी राजा कैडवोलाडर को बेश छोड़कर भागना पड़ता है। एक फरिश्ता उसे कहता है कि अभी ब्रितानियों का समय खत्म हो गया है,
पर एक दिन वो वापस आएंगे।
हाँ, तो अंत में भी एक भविष्य की आशा है, हार अंतिम नहीं है।
तो हमने देखा, कहानी भले ही मनगढ़ंत हो पर इसके पीछे कुछ गहरे संदेश छिपे हैं।
हाँ, कई सारी बातें निकल कर आती
हैं। पहला तो ये कि अपना वंश महान लोगों जैसे ट्रोजन से जोड़कर अपनी इज्जत बढ़ाना। हम कोई मामूली लोग नहीं हैं।
बिल्कुल, ब्रिटेन कोई पिछड़ा द्वीप नहीं बल्कि रोम जैसी पुरानी और महान सभ्यता है,
वैधता और प्राचीनता का दावा।
दूसरा, एक अच्छे राजा के गुण क्या हैं? आर्थर जैसा राजा देश को महान बनाता है और वोटिगन जैसा राजा बर्बादी लाता है। राजा का चरित्र ही देश की किस्मत तय करता है। ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है ना, किसी भी लीडर के लिए।
बिल्कुल। तीसरा, किस्मत का खेल, फॉर्चून का पहिया।
हाँ, भाग्य का पहिया। कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं और फिर बिखर जाते हैं। बुलंदी है तो पतन भी है, कोई चीज हमेशा नहीं रहती, ये विचार शायद लोगों को जिंदगी की सच्चाई समझाता था।
और चौथा, भविष्यवाणी और राष्ट्रीय किस्मत।
हाँ, डेस्टिनी। मर्लिन की बातें हो या आखिर की भविष्यवाणी, ये बताती हैं कि शायद सब कुछ पहले से तय है। हार भी आखिरी नहीं है, उम्मीद बाकी है। खासकर दबे हुए लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है।
कुछ बातें हैं विचार इस किताब के वाकई यादगार हैं, जैसे जेफरी का वो दावा कि वो तो बस एक बहुत पुरानी ब्रिटिश किताब का अनुवाद कर रहे हैं।
हाँ, कितनी चतुराई से अपने कल्पना को इतिहास बना दिया, कमाल का नैरेटिव डिवाइस है।
और मर्लिन की ड्रैगन्स वाली भविष्यवाणी, लाल ड्रैगन बनाम सफेद ड्रैगन,
ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये पहचान, संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक बन गया। आज भी वेल्स के झंडे पर लाल ड्रैगन है। कितना गहरा असर है।
बिल्कुल। और आर्थर का रोम को जवाब, हमारे पुरखों ने रोम जीता था, उन्हें हमें टैक्स देना चाहिए।
हाँ, ये ब्रिटेन के आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को दिखाता है, भले ही ये सच न हो। ये दिखाता है कि जेफरी ब्रिटेन को कहां देखना चाहते थे, दुनिया के केंद्र में।
और आर्थर के राज का वो वर्णन, तब ब्रिटेन इतना शानदार और अमीर हो गया था कि बाकी साम्राज्य उसके सामने फीके थे।
ये एक सुनहरे अतीत की तस्वीर है जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। हर देश अपने इतिहास में ऐसे सुनहरे दौर ढूंढता या कह लीजिए गढ़ता है।
तो ठीक है, ये इतिहास नहीं है, पर आज हम इससे क्या सीख सकते हैं, रियल लाइफ में इसका क्या मतलब है?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। पहले बात तो राष्ट्रीय मिथकों की ताकत। हर देश अपनी पहचान बनाने, लोगों को जोड़ने, उनमें गर्व जगाने के लिए ऐसी कहानियां बनाता है। हम अपने आसपास भी देखें तो ऐसी कई कहानियां मिलेंगी जो शायद पूरी तरह सच ना हो, पर हमारी पहचान का हिस्सा है।
बिल्कुल। दूसरी बात, कहानी का सच पर असर।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोचकर हैरानी होती है कि ये किताब 500 साल तक सच मानी गई।
500 साल?
हाँ, ये दिखाता है कि एक अच्छी दिलचस्प कहानी अक्सर सूखे तथ्यों से ज्यादा ताकतवर होती है। आज के जमाने में जहाँ इतनी जानकारी और फेक न्यूज है, ये बात और भी जरूरी हो जाती है। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि कोई कहानी क्यों सुनाई जा रही है, उसके पीछे मकसद क्या है।
सही कहा, क्रिटिकल थिंकिंग। तीसरा, कहानियां कैसे बदलती और बढ़ती हैं।
हाँ, आर्थर और मर्लिन की कहानी जेफरी ने शुरू की, पर वो वहीं रुकी नहीं। बाद के लेखकों ने उसमें और रंग भरे, उसे अपने तरीके से ढाला। महान कहानियां ऐसी होती हैं, वो समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे हमारी अपनी लोक कथाएं या पौराणिक कहानियां, उनके भी कितने रूप मिलते हैं।
हर जमाना अपनी कहानी कहता है।
और चौथी बात, इतिहास और विरासत में फर्क समझना।
ये थोड़ा समझाएं।
मतलब जेफरी की किताब शायद इतिहास के तौर पर खरी न उतरे, पर ये एक जबरदस्त साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत है। हम किसी चीज को तथ्यात्मक रूप से गलत जानते हुए भी उसके कल्चरल और भावनात्मक महत्व को समझ सकते हैं।
अच्छा, जैसे कई त्योहारों या रिवाजों की कहानियां होती हैं।
बिल्कुल, उनका ऐतिहासिक सच शायद कुछ और हो, पर उनका सांस्कृतिक महत्व बना रहता है।
तो अंत में, इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे खास बात क्या रही, मतलब टेक अवे?
मेरे लिए तो सबसे कमाल की बात ये है कि इस एक किताब ने, जो शायद इतिहास कम और कल्पना ज्यादा थी, किंग आर्थर की पूरे दुनिया रच दी।
हाँ, ये तो है।
इसके बिना आर्थर, मर्लिन, गोलमेज, एवलॉन, ये सब शायद होते ही नहीं, या वैसे नहीं होते जैसे हम आज जानते हैं। ये दिखाता है कि शब्द और कल्पना में कितनी ताकत होती है। ये झूठा इतिहास इतना असरदार था कि सदियों तक सच माना गया, और इसने पश्चिमी संस्कृति पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। कमाल है।
मेरे लिए शायद यही कि किसी देश या समाज के लिए उसकी कहानियां, उसकी कल्पनाएं शायद उतनी ही जरूरी होती हैं जितनी की सच्ची घटनाएं।
हाँ,
जेफरी ने दिखा दिया कि एक अच्छी कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो पहचान बनाती है, लोगों को जोड़ती है, और कभी कभी तो इतिहास का रुख भी मोड़ देती है।
बिल्कुल। और ये हमें शायद सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास जो कहानियां सुनते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, उसमें कितना सच है और कितनी कल्पना।
कितना जेफरी ऑफ मॉनमाउथ वाला अंदाज है।
हाँ, ये सवाल तो सोचने लायक है।
सच में, अगली बार जब कोई बड़ी राष्ट्रीय कहानी सुने तो जरा रुक कर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।